Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam. Eko Devo Devaki Putra Eva.
Eko Deva Devaki Putra Eva.
Ekam Mantrasya Tasya Namani Yane.
Ekam Mantrasya
Karma pi ekam tasya devasya seva.
Karma pi ekam tasya devasya seva.
To Sri Jagannath Mandir Iskan, Bangalore mein sayankal ke 7 din ke Bhagavad Gita ke satsang mein aapka swagat hai. Kal humne Gita Mahatmya ke kuch shlokon ka श्रवण और वर्णन किया था और आज जो अभी श्लोक हमने पढ़ा ये सातवां गीता महात्म्य का श्लोक है और श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सब लोग कहते हैं कि एक ही भगवान की पूजा करनी चाहिए तो हाँ लो एक ही भगवान एकम एको देवो देवकी पुत्र एव आपको एक ही भगवान आराधना के लिए चाहिए तो देवकी पुत्र ये भगवान जो देवकी नंदन है ये स्वयं भगवान है और इसी की उपासना कर एक ही भगवान चाहिए तो ये एक भगवान है गीता महात्म्य से ये सिद्धांत मिलता है एक मंत्र जपना है कितने मंत्र जपें किस किस को राजी करने का प्रयास करें एक ही मंत्र जपने का हमारा इच्छा है तो एक ही मंत्र जपना तस्य नामानि यानि उसी भगवान गोविंद के नाम का उच्चारण करो वही मंत्र है
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ये एक मंत्र है सारे मंत्रों का सार है महामंत्र इसको कहा गया है ये साक्षात श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगने की प्रार्थना है हरे राधा रानी को संबोधन है जो भगवान का माता का रूप है जब हम तुम्हें वो माता भगवान को कहते हैं तो राधा रानी को प्रार्थना करते हैं एक मेल गार्ड एक फीमेल गार्ड एक पुरुष भगवान और एक शक्ति के रूप में भगवान तो राधा रानी भगवान का माता का स्वरूप है मात्र भगवान राधा रानी है पितृ भगवान कृष्ण है तो मात्र भगवान बड़ी दयालु होते हैं माता करुणामयी होती हैं इसलिए अगर एक भगवान का जो हरे कृष्ण मंत्र से हम माता भगवान को राधा को प्रार्थना करते हैं हमको श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगाए क्योंकि ये हमारा स्वरूप है हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वो है ही भगवान श्री कृष्ण की नित्य प्रेममयी सेवा करना जीवेरा स्वरूप है बोलिए कृष्णेर नित्य दास और ये बात राधा के भाव में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं देखो ये रहस्य भगवान स्वयं कभी नहीं बोलते हैं भगवान अगर रहस्य बोले तो सबके लिए बोले या किसी को नहीं बोले कुछ को बोले कुछ को नहीं बोले तो भगवान का पक्षपात हो जाएगा इसलिए भगवान ने रहस्य के उपचार करने को रहस्य खोलने का सेवा भक्तों को दिया है भगवान के भक्त भगवान के रहस्य को खोलते हैं भगवान स्वयं नहीं खोलते हैं तो जब भक्त के अवतार में भगवान श्री कृष्ण राधा का भाव अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने इस भाव का उद्घाटन किया, ये भाव प्रकट किया। बहुत गोपनीय भाव है कि जीव का स्वरूप क्या है। स्वरूप का मतलब है उसका का अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो चीज उसमें नहीं है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो जीव आत्मा का स्वरूप क्या है? जीव आत्मा का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। नित्य, नित्य का मतलब चाहे देवता के शरीर में हो, चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे ब्रह्मा के शरीर में हो, चाहे किसी कीट पतंग के शरीर में हो, लेकिन जीव आत्मा का स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और ये उद्घाटन, ये रिवीलेशन केवल राधा भाव में इस रहस्य को श्री गौरंग महाप्रभु ने प्रचारित और प्रकाशित किया है। तो हमारा स्वरूप सेवा है और ये हरे कृष्ण मंत्र वो सेवा मांगने की प्रार्थना है। इसका मतलब ये मंत्र हमारे स्वरूप सिद्धि का मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण से हमारे स्वरूप की सिद्धि होगी। और प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में ही स्वरूप सिद्धि शब्द पांचवें पेज पे लिख दिए है कि एक दिन हमको अपने स्वरूप की सिद्धि करनी है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। प्रभुपाद ने कहा भगवत गीता का मिशन स्टेटमेंट क्या है श्री कृष्ण का? श्री कृष्ण के भगवत गीता में उद्देश्य क्या है, मिशन स्टेटमेंट क्या है भगवत गीता का? मन मना भाव मन भक्तो। भगवत गीता का मिशन स्टेटमेंट मतलब उद्देश्य, भगवान के भगवत गीता बताने का सार क्या है? मन मना भाव मन भक्तो। इसको कहते हैं चार सूत्री प्रोग्राम भगवत भगवान श्री कृष्ण का, 4-point program, चार सूत्री प्रोग्राम है। मन मुझ में लगाओ, नहीं लगता है। मेरी पूजा करो, नहीं होती है। मेरे भक्त बनो, मुश्किल है। नमस्कार तो कर सकते हो तो नमस्कार कर लो, कुछ तो करो, कहीं से तो काम शुरू करो। लेकिन सीधा सा भगवान का आदेश है मेरे भक्त बनो। भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन मुझ में लगाना पड़ेगा, मेरी पूजा करनी पड़ेगी, मुझे नमस्कार करना पड़ेगा। ये जो भी गीता के ऊपर प्रवचन करे और ये बात पहले स्पष्ट कर दे कि गीता का उद्देश्य कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण की पूजा करनी है, कृष्ण को नमस्कार करना है और मन से कृष्ण का चिंतन करना है, तो वो भगवत गीता के भाव को जानता है और उसकी भगवत गीता के प्रचार से लोगों के हृदय में परिवर्तन होगा, लोग भक्त बनेंगे, लोग दुख से निवृत्त होंगे, सो लोग अर्जुन की तरह समस्याओं से पार हो जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान होगा और वो विजयी होंगे, वो सफल होंगे और वो सिद्धि को प्राप्त करेंगे। जो इस एक मिशन स्टेटमेंट को भूल गया और सारी भगवत गीता बोल गया फिर भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये मिशन स्टेटमेंट है। इसको मिस करने के बाद आप मानो 2 और 2 3 लिख दिया, फिर सब भले कितना भी गणित पूरी करो अंत में उत्तर गलत होगा। तो ये भगवान के भगवत गीता का उद्देश्य है कि भक्त बनो। और अर्जुन को गीता सुनाने के समय भगवान ने अपने मुख से कहा, अर्जुन आपको मैं गीता इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। प्रभुपाद जी लिखते कम से कम थ्योरेटिकली कृष्ण को भगवान और अपने आप को भक्त मान के गीता पढ़ोगे तो थोड़ा सा गीता आपके हृदय में प्रकाशित होगा, गीता का संदेश। और कृष्ण को भगवान न मानकर अपने को भक्त न मानकर गीता पढ़ोगे तो काली लाइनों में अक्षर दिखेंगे, कुछ भी हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो उसके इन शब्दों का बैठ के यहाँ 5000 साल के बाद पढ़ने का फायदा क्या है? अगर ये भगवान के शब्द नहीं है तो ये सार्थक किस बात में, किस काम के है? किसी आदमी के शब्द होते तो इसको 5000 साल के बाद पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, हमारा अनुभव में आई है कि लोग आधे से ज्यादा दुनिया में भगवान को मानते ही नहीं, जो मानते हैं वो भगवान को जानते नहीं। भगवान कौन है इसके 100 आदमी से पूछो 100 उत्तर मिलेंगे, और एक का दूसरे से उत्तर मिलेगा ही नहीं। अगर भगवत गीता को ठीक तरह पढ़ा होगा तो कभी भी गलती नहीं करेगा कि भगवान कौन है। भगवत गीता में एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म का आधार मैं हूं। इसका मतलब जो ज्ञानी कहते हैं कि भगवान ब्रह्म है, वो ब्रह्म भी टिका हुआ है श्री कृष्ण कहते हैं मेरे ऊपर। दूसरी जगह पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्याम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, परमात्मा मेरा विस्तार है। तो जो योगी हैं उनको ये मानना पड़ेगा जब कृष्ण अर्जुन को कहेगा 18वें अध्याय में क्या श्लोक है, हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठन्ति यंत्र रूढ़ानी माया, मैं सबके हृदय में ईश्वर हूँ, सबके हृदय में हूँ, ये शरीर रूपी यंत्र या गाड़ी को मैं चला रहा हूँ। और दूसरा इसके बाद का श्लोक श्री कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उस परमात्मा की शरण में जाओ। अर्जुन कहते हैं परमात्मा की शरण में जाऊं, अंदर में बैठा है परमात्मा, मेरे को कैसे पता लगेगा मेरा मन बोल रहा है कि परमात्मा बोल रहा है? सबसे बड़ी समस्या है कि अंदर में परमात्मा हमको कह रहा है कि हमारा मन कह रहा है, ये तो मुश्किल है। अर्जुन ने इस परमात्मा के शरण को स्वीकार नहीं किया, तब श्री कृष्ण ने कहा माम एकम शरणम, तो फिर मेरे शरण में आ जाओ। पहले कृष्ण कहते हैं बुद्धा शरणम गच्छ, अर्जुन बुद्धि की शरण लो। अर्जुन बोला बुद्धि मेरी तो डावाडोल है, उसकी शरण लेके मैं कहां जाऊं, बुद्धि तो मेरी अभी निर्णय कर नहीं पा रही है। तो बोलते परमात्मा का शरण लो। बोला वो मेरे को समझ में नहीं आता है कि अंदर से परमात्मा बोल रहा है कि मन बोल रहा है। तब भगवान ने कहा माम एकम शरणम गच्छ, अंतिम में ये भगवान ने उद्घाटन किया है। तो परमात्मा भी श्री कृष्ण है और ब्रह्म भी श्री कृष्ण है, दोनों का आधार। ओम क्या है, वैदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का अर्थ मुझे जानना है, वेदों में पवित्र ओमकार मैं हूं। तो जब गीता को थोड़ा भी कभी भक्तों के संग में सुना और समझने का प्रयास किया होगा तो साफ समझ में आएगा श्री कृष्ण ब्रह्म का भी आधार है, परमात्मा का भी स्रोत है, विश्व रूप भी श्री कृष्ण ने दिखाया है और विष्णु रूप भी श्री कृष्ण ने दिखाया, ये सारे श्री कृष्ण में समाये हुए हैं। ये गीता से सार निकलता है, विश्व रूप कृष्ण ने दिखाया, अर्जुन को विष्णु का रूप कृष्ण ने दिखाया, विष्णु ने कृष्ण का रूप दिखाया ऐसा नहीं, कृष्ण ने विष्णु का रूप दिखाया, ये भगवद गीता की शिक्षा है। तो भगवद गीता को ठीक तरह समझने से ये अंततोगत्व निर्णय लेना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा सबका सब उसमें समाये हुए हैं, विश्वरूप विष्णु सब उसमें समाये हुए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है, प्रकृति भी उससे बाहर नहीं है, हम भी उससे बाहर नहीं है। इसलिए कृष्ण को कभी भी प्रभुपाद ने भगवान नहीं कहा, परम सत्य माना है, परम पुरुष भगवान माना है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड बोला है, कभी गॉड नहीं लिखा है। प्रभुपाद नेवर एवर सेड कृष्ण गॉड, सेड कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। जितने भी भगवान के अवतार हैं, जितने भी भगवान के विस्तार हैं, जितने भी भगवान के ब्रह्म परमात्मा आदि तत्व हैं, उन सब तत्वों का समावेश कृष्ण में है। जितनी शक्तियां हैं बाहरंग अंतरंग मध्य सब कृष्ण में समाये हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। गॉड कभी नहीं कहा है कृष्ण, कभी प्रभुपाद ने गॉड नहीं कहा। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, ये सब अवतार हैं, ये सब लिस्ट अवतारों की है, लेकिन इन सब का स्रोत या उद्गम स्थान कृष्ण है, अंत तो गतवान। सो भगवद गीता का अध्ययन करने वाले को पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि गीता में श्री कृष्ण को भगवान परम पुरुष भगवान के रूप में अर्जुन ने माना है। क्या कहते अर्जुन दसवें अध्याय में क्या बोलता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु अजन्मे हो। मैं नहीं कहता हूं, असितो देवलो व्यास सभी कहते हैं, शास्त्रों का प्रमाण है। अब सामान्य लोगों को कहने के लिए धृतराष्ट्र बोलेगा तो धृतराष्ट्र वाच लिखा होगा, अर्जुन बोलेगा तो अर्जुन वाच लिखा होगा, संजय बोलेगा तो संजय वाच लिखा होगा, लेकिन जब कृष्ण बोलेंगे तब क्या लिखा होगा, श्री भगवान वाच। तो भगवान अर्जुन नहीं है, भगवान धृतराष्ट्र नहीं है, भगवान संजय नहीं है, भगवान केवल कृष्ण है। ये इतना सरल है, लेकिन मूर्ख नहीं मानने को तैयार है, सभी भगवान है। और भागवत में आप खोल के पढ़ेंगे तो ब्रह्मा वाच लिखा है, शिव वाच लिखा है, देव इंद्र वाच लिखा है, लेकिन जहां कृष्ण बोले हैं या विष्णु या नारायण बोले हैं वहां भगवान वाच है, वहां लिखा है भगवान वाच। अगर सब एक होते तो सब जगह एक ही भगवान वाच लिख के खत्म करते ना। तो इसलिए ये बात ठीक तरह पहले दिमाग में बिठा लो कि भगवान है कौन। भगवत गीता है का मतलब ये भगवान का गीत है, तो एक ही भगवान चाहिए जिसके अंदर सब समाये हुए हैं, जिससे बाहर कुछ भी नहीं है, तो वो भगवान श्री कृष्ण। एक मंत्र उसका नाम, एक कर्म उसकी सेवा, एक शास्त्र, एक ही शास्त्र क्या पढ़ना है, शास्त्रम एकम देवकी पुत्र गीतम। ये जो भगवद गीता श्री कृष्ण ने दी है ये एक ही शास्त्र है। किम शास्त्र विस्तृत, और विस्तार से शास्त्रों की जरूरत क्या है, जो सब शास्त्रों में है वो गीता में तो है, लेकिन जो कहीं भी नहीं है वो भी गीता में है। कहीं भी काल रूप किसी शास्त्र में भगवान का नहीं दिखाया है, गीता में काल रूप है। विश्व रूप के साथ काल रूप सिर्फ गीता में और कहीं नहीं है। सीना ठोक कर ऐसे उंगली छाती पे रखकर कहीं नहीं कहा है किसी जगह भगवान ने कि मैं भगवान हूं, मेरा शरण लो, मेरे भक्त बनो, कहीं किसी ने आज तक नहीं कहा है। कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा भगवान भी कहीं नहीं मिलेगा जो भक्त को ऊपर बिठाए स्वयं नीचे बैठे। ऐसा भगवान भी कहीं नहीं मिलेगा, भक्त की सेवा करे, भक्त क्या भक्त के घोड़े की भी सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, ऐसा भक्त वत्सल भगवान और कहीं नहीं मिलेगा। ये अद्भुत श्री कृष्ण भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, भक्त वत्सल हैं। बछड़े के पीछे जैसे गाय जाती है ऐसे है, भक्तों के पीछे भगवान जाते हैं, भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। भागवत के महात्म ने लिखा है कि जैसे बछड़े के पीछे गाय जाती है ऐसे भक्त के पीछे भगवान भागते फिरते हैं। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में मई महीने जून महीने में गर्मी में बगैर कुटिया के तप करते हैं, तो भगवान को चिंता होती है, रक्षा के लिए खड़े होते हैं। कोई शेर आबाद आ रहा है तो बाहर भगवान पीछे खड़े हैं, गर्मी हो रही है तो आंचल से छाया कर रहे हैं, ऊपर से भगवान भगवान भक्त की सेवा का अवसर ढूंढते रहते हैं। सनातन गोस्वामी ने कहा रघुनाथ तो हम सेवा भगवान की करने आए हैं, भगवान से सेवा लेने के लिए नहीं आए हैं। आप कुछ अपना झोपड़ी बना लो, कुछ तो ठेस रूप बना लो, छोटी सी कुटिया बना लो, तुम्हारी धूप भगवान से देखी नहीं जाती, तुम्हारी तपस्या भगवान से देखी नहीं जाती, तुम्हारा कष्ट भगवान नहीं देख सकता, तुम्हारे ऊपर छाया करने के लिए वो ब्रजेश्वरी अपना आंचल फैलाती है और कृष्ण खड़ा होता है कि कहीं ये शेर तुम्हारे को नुकसान न पहुंचाए, कुटिया बना के अंदर रहो। ऐसा भगवान जो भक्तों की सेवा करने, भगवत गीता में भगवान भक्तों के सेवक के रूप में दिखता है, भक्त वत्सल के रूप में दिखता है, अर्जुन के सारथी के रूप में दिखता है, ड्राइवर की जगह के ऊपर बैठा है और अर्जुन को ऊपर बिठा दिया है। इससे ज्यादा और अद्भुत भगवान का भक्त वत्सल का दर्शन कहीं हो नहीं सकता है। इसलिए एक बार अर्जुन को कृष्ण लेके पहले रथ में गए, रथ को फिर छोड़ दिया, कहा ऐसे घूम के आते हैं। तो घूमते घूमते अर्जुन ने बोला प्यास लगी है, तो बोला पेड़ के ऊपर चढ़ो, देखो कहीं कोई कुटिया होगी, कोई संत साधु रहते होंगे, तो दूर से कहीं धुआं दिखाई दिया। कृष्ण और अर्जुन चल के गए तो एक तपस्विनी स्त्री बैठी थी बड़ी तपस्या में, प्रणाम किया, माँ ने दूध दिया लाई, दही लाई, प्रसाद भोग लगाया, उनको अर्पण किया जैसे अतिथि को करते हैं। तो उस योगिनी के कुटिया में तलवार तीखी पड़ी थी और ऐसे लगता था रोज तेज करती है, तो आश्चर्य होगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि ये तपस्या करती है, तलवार की क्या जरूरत है और रोज तेज भी करती है, इसका क्या कारण है, पूछो तुम। तो कृष्ण ने पूछा तपस्विनी ये तलवार क्यों रखी है। तब उसको थोड़ा सा क्रोध जैसा आवेश आ गया, मतलब ये तलवार से मुझे तीन का गर्दन काटना है। आश्चर्य से पूछा कृष्ण किसका किसका, बोला पहला तो अर्जुन का गर्दन काटना है। अब अर्जुन थर थर कांपने लगा, मेरा गर्दन काटेगी। कृष्ण ने पूछा क्यों भाई अर्जुन का गर्दन क्यों काटोगी मेरी माँ। बोला भगवान को सारथी बना के नीचे पांव से बोलता है लेफ्ट चलो राइट चलो, घोड़ों पर सफाई कराता है, अरे हार गया होता मर गया होता क्या फर्क पड़ता, भगवान को इतना कष्ट क्यों दिया। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी माँ, दूसरा किसको मारना है, यशोदा को नहीं छोड़ूंगी, गला काट दूंगी। बांध दिया रस्सी से, इतना मक्खन खा गया एक मटका फोड़ दिया क्या फर्क पड़ता है। एक मटके के टूटने से वो कोमल नील मणि उस छोटे से 3 वर्ष के बालक को मुखर के साथ बांध दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। तीसरा किसको मारना? द्रौपदी का गर्दन काटना है। नंगी हो जाती क्या फर्क पड़ता, शरीर था, भगवान को साड़ी करके ऊपर अपने ऊपर ढक रही है। इतना भगवान का एक हवा भगवान से ली जाती है, साड़ी करके अपने ऊपर ढकवा लिया। अब तो अर्जुन बोलता है मैं तो क्या, मेरी पत्नी भी गई, और भगवान ने बोला ये तो मेरी माँ। तब श्री कृष्ण ने कहा देवी, श्री कृष्ण अपनी इच्छा से यशोदा के वात्सल्य कर आस्वादन करने के लिए बंद गए थे, द्रौपदी के भक्ति के प्रभाव से उनके आंसू की धारा में कृष्ण बहकर उसकी रक्षा के लिए चले गए थे, और अर्जुन कृष्ण से अभिन्न सखा है, कृष्ण की इच्छा अर्जुन की सेवा कर। बोला आपको कैसे पता ये सब बातें? तब श्री कृष्ण ने कहा मैं श्री कृष्ण हूँ, ये नहीं कहा अभी तक के लिए अर्जुन ने, मैं श्री कृष्ण हूँ। तब उस तपस्विनी ने कहा प्रणाम किया, कहा अब तो मैं शरीर छोड़ने जा रही हूँ, आपके दर्शन के बाद मेरे को जीने की कोई इच्छा नहीं है अभी। कोई बात नहीं, अभी मार तो नहीं सकती हूँ, लेकिन यशोदा को पुत्र की जुदाई से रोना पड़ेगा, द्रौपदी को पांचों पत्ती छोड़ के चले जाएंगे और रास्ते में अकेला गिरना पड़ेगा, और अर्जुन से एक दिन भील कोली इसके गांडे को तिरस्कार करके और इसको हरा के चले जाएंगे, इतना तो मैं भूल के जाती हूँ, और तीनों को ये सहना पड़ेगा। अर्जुन एक दिन कहता है मुझे तब याद आ रहा है कृष्ण ने उस दिन मुझे संकेत करके उसके मुख से ये कहलाया था कि एक दिन गांडीव रहेगा मेरे पास, रथ भी रहेगा अग्नि का दिया हुआ, मैं भी वही रहूंगा, लेकिन उस वक्त मैं कृष्ण नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। यशोदा दी 100 साल तक कृष्ण की जुदाई में आंसू बहाए, द्रौपदी रास्ते में गिर गई, कोई पति साथ नहीं रहा। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है जो समझना इतनी सरल नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान अपनी इच्छा से सारथी बनने के लिए तैयार थे। तो ये 5 सारथी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भगवद गीता में कृष्ण के भक्त वत्सल भाव का दर्शन है, और अर्जुन की शरणागति का प्रसाद है। अर्जुन की शरणागति का ये प्रसाद है। पहली शरणागति अर्जुन की कल बताया आपको, उसने कृष्ण को चुना, सेना को नहीं चुना। दूसरी शरणागति अर्जुन की अपने आप को कहेगा कार्पण्य, मैं कृपणता के दोष में फंस गया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। दूसरी शरणागति कृपणता है, अपने आप को असमर्थ समझना दूसरी शरणागति है। और तीसरी तो भगवान ने कह दिया कि मेरा शरण लो, अर्जुन ने शरण ले लिया। तब अर्जुन ने कहा करिष्यतम वचनम, अब जो आप कहेंगे तब मैं करूंगा। तब कृष्ण ने कहा उठाओ धनुष करो युद्ध, बस हो गया, यही करना है। तो ये गीता को समझने से पहले प्रभुपाद जी एक बार अर्जुन और कृष्ण का चित्र देखा, खड़े हुए अपने डंडे के ऊपर देखते रहे, फिर भक्तों को और देखा, बोला सुनिए कृष्ण के साथ अर्जुन के फोटो को अमर बनने के लिए बहुत बड़ा अर्जुन को बलिदान देना पड़ा है, अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों का वध किया है, गुरु द्रोणा को मारने का प्रयास मार मरवाया है, भीष्म के ऊपर बाण चलाए हैं, सारे परिवार की आहुति दी है, तब आज कृष्ण के साथ इसका फोटो यहाँ पूजित हुआ है। इसे मुफ्त में कृष्ण के साथ अर्जुन का फोटो पूजित नहीं है, बड़ा बलिदान दिया है कृष्ण ने, जो परित्याग करता है सब चीज का। अब आते हैं भगवद गीता के शुरू करने से पहले, पहला ही श्लोक है ये, भगवद गीता महाभारत के अंदर है, मध्य महाभारतम 18 अध्यायनी अम्ब, गीता माता है अम्ब, 18 अध्याय के ऊपर है, मध्य महाभारत के मध्य में है, महाभारत के मध्य में है, कहाँ है? भीष्म पर्व में है। भीष्म पर्व में कहाँ है? 25वें अध्याय से 43 अध्याय तक है, 18 हो जाएंगे 25 से 43 तक। 25वें अध्याय से 25वां अध्याय जब आता है उस दिन 10वां दिन होता है युद्ध का। भीष्म पितामह धराशायी होते हैं सरसैया के ऊपर। भीष्म पितामह जब सरसैया के ऊपर गिरते हैं वो 25 वो 10वां दिन युद्ध का है और उस दिन 25वां अध्याय शुरू होता है। इसलिए ये मानना है कि भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले सुनाई, संजय ने धृतराष्ट्र को गीता युद्ध के 10वें दिन सुनाई। संजय युद्ध भूमि में था जब भीष्म पितामह गिरा, पहला सेनापति प्राप्त हुआ, तब भागता हुआ हस्तिनापुर आया। महाराज महाराज भीष्म पितामह सरसैया पे, तब धृतराष्ट्र कहते हैं क्या हुआ, पहले से बताओ क्या हुआ, से फ्रॉम बिगनिंग व्हाट हैपेंड देयर। तो पहला श्लोक 10वें दिन युद्ध के भीष्म के धराशायी होने प्राप्त होने के बाद संजय और धृतराष्ट्र के बीच में बात हुई है। गीता कृष्ण ने अर्जुन को पहले दिन सुनाई है युद्ध से पहले, लेकिन संजय धृतराष्ट्र को 10वें दिन रिपीट करके सुना रहा है। और व्यास देव ने गणपति से लिखवाया पूरा महाभारत। कोई पूछे कि गीता लिखी किसने, तो बोलना गणपति ने। लिखाई किसने? व्यास देव ने। कही किसने? कृष्ण ने। तो बहुत सारे पात्र हैं इसके। पहला श्लोक है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र वाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, ये क्षेत्र धर्म का है। यहां बड़े बड़े धर्म के अनुष्ठान हुए हैं। द्वापर युग का धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बड़ा धर्म क्षेत्र रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है कि जो अपना अजमेर के पास है पुष्कर, वो सत्ययुग के समय ऐसे अलग अलग समय में कौन सा क्षेत्र कब धर्म क्षेत्र रहा है, तो कुरुक्षेत्र द्वापर में धर्म क्षेत्र था। यहां ब्रह्मा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, बहुत बड़ा सरोवर जो है ब्रह्म सरोवर, वो ब्रह्मा के यज्ञ से लोगों के कल्याण के लिए वहां उत्पन्न हुआ है। उसको कुरुक्षेत्र इसलिए कहते हैं कि महाराज कुरु ने वहां सोने के हल से धरती का यज्ञ करने के लिए शोधन किया। तो कहा बीज क्या डालोगे? बोला मेरा रक्त का बीज डालूंगा, मैं अपना प्राण दे के भी इस यज्ञ की पूरी कर दो। भगवान प्रकट होके पूछा कि वर मांग लीजिए। बोला पहला वर तो ये दीजिए कि ये क्षेत्र मेरे नाम से होना चाहिए कुरु। तो तब से कुरुक्षेत्र इसका नाम हो गया। कुरु महाराज के यज्ञ में बलिदान के भाव से प्रसन्न होकर भगवान ने ये वरदान दिया। और दूसरा वरदान ये मांगा कि इस क्षेत्र में जो प्राण त्यागे उसकी सदगति हो, इस क्षेत्र में जो प्राण त्यागे उसकी सदगति हो। तो ये दो विशेष महाराज कुरु को वरदान भगवान ने दिए। यहाँ व्यास देव की जमाने में तपस्या करके वहां रहे हैं। और इसका चयन युद्ध के लिए क्यों किया गया? महाभारत में एक बड़ी रोंगटा खड़ा करने वाली कथा है। युद्ध की घोषणा तो हो चुकी थी कि युद्ध होने वाला है, अब युद्ध कहाँ किया जाए। कृष्ण अर्जुन को लेकर घूमने को निकला। और इस क्षेत्र कुरुक्षेत्र आपको मालूम है कि विराट नगर में थे उस वक्त। ये विराट नगर आज भी अगर आप अलवर से जयपुर जाएंगे एक रास्ते में बीच में विराट नगर है। कभी दिल्ली में देखोगे किसी बस के ऊपर लिखा होगा विराट नगर डिपो। विराट नगर हरियाणा राजस्थान, उस राजस्थान में हरियाणा के बॉर्डर पे उस तरफ है। और दूसरे तरफ देखेंगे तो मेरठ के पास में हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर आज भी मेरठ के पास में हस्तिनापुर नाम से है, गंगा के किनारे पे है। मेरठ तो विराट नगर से कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र के स्थान पे जब आया तो एक किसान को देखा जो खेत में काम कर रहा था। दोपहर में उसकी पत्नी एक हाथ में बच्चे को उठाया, सर के ऊपर रोटी भोजन उसका लाई। खेत में पानी आ रहा था, कहीं से बांध टूट गया था। पति मिट्टी से बांध बंद कर रहा था। पत्नी ने कहा बहुत समय हो गया, भोजन कर लीजिए पति देव। बोला ये काम रुक जाएगा, पानी बह रहा है। बोला मैं प्रयास करती हूँ रोकने का, आप भोजन कर लीजिए। तो पति भोजन करने बैठा, पत्नी ने थोड़ा प्रयास किया, मिट्टी से पानी रुका नहीं। उसने कहा पति को वचन दिया है मैंने, कर्तव्य पालन करना है, क्या करूं। उसने अपने बच्चे को उठाया और जो खड्डा था उसमें ऐसे भरा, पानी रुक गया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा देखो यहाँ युद्ध करेंगे, ये क्षेत्र चुनेंगे युद्ध के लिए, जहां परिवार का मोह काम में बाधा नहीं बन सकता है, कर्म में अपने स्वधर्म पालन में मोह बाधा नहीं बन सकता है। पुत्र मोह का परित्याग करके उसने अपने कर्तव्य को पालन किया। यहाँ आपके भाइयों का युद्ध है, मोह बीच में आए, वो मोह आपको बाधा न डाले और धर्म के ऊपर अटल रहे आदमी, उसके लिए ये क्षेत्र चुना जाता है। ये छोटी सी कथा महाभारत में है। इस स्थान को चिन्ह करने के लिए बलिदान देना पड़ता है, जिसमें मोह से धर्म मोह से ऊपर उठ जाए। धर्म का आकार बड़ा है, मोह तो बहुत छोटी चीज है, आज नहीं तो कहीं टूटने वाला है। लेकिन आज धर्म के युद्ध में अर्जुन इस स्थान के ऊपर युद्ध करने से धर्म की जय हुई है, धर्मराज राजा बना है। भगवान तो धर्म को स्थापन करने के लिए आते हैं, तो धर्मराज तो धर्म है, उसी को स्थापन करने के लिए आए। उत्तम हो सकता है जब धर्म के स्थान पे जहां जहां मोह बाधा न बने। संसार में बंधन तो मोह ही है, मोह से नहीं ऊपर जब तक उठते हैं तब तक अपने कर्तव्य कर्म करने में हम सफल नहीं होते हैं, अपने स्वधर्म पालन में हम सफल नहीं हो सकते, अथवा अपने स्वरूप में भी स्थित होना संभव नहीं है। इसलिए ये स्थान युद्ध के लिए चुना गया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, समवेता का मतलब है दोनों एक ही खानदान के हैं। सम समान, वेता एक दूसरे को जानते हैं, ये कोई दुश्मन ऐसा नहीं है कि नया है जिसको कभी देखा नहीं है। ये दोनों एक ही परिवार के हैं, सारे ही चाचा मामा हैं, भाई भतीजे हैं, कोई दूसरा नहीं, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कुलू से जानते आते हैं, समवेता। फिर भी युयुत्सव युद्ध के लिए खड़े हो गए हैं। ये आज की बात नहीं है, कौरवों पांडवों की बात नहीं है, पहले भी ऐसे कश्यप की दित्ति के पुत्र देवता और दित्ति के पुत्र दैत्य और आदित्य के पुत्र देवता, एक ही बाप के दो माताओं के दो बेटे और उनमें युद्ध अभी तक चल रहा है। देवताओं और असुरों दोनों भाई हैं आपस में। इसलिए प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है कि जैसे एक पति की दो पत्नियां होती हैं, वो सोतन आपस में लड़ती हैं, लेकिन है तो एक ही पति की ना, भाई दोनों का पति तो एक ही है ना, लेकिन वो सोतन आपस में लड़ती हैं। ऐसे भगवान तो एक है, एक दैत्य है, एक देवता है, तो ये दोनों जैसे भगवान की दो पत्नियां हैं और आपस में सोतन है और लड़ रही है, लेकिन दोनों का जन्मदाता तो भगवान ही है ना। ये बात तो यहां भी एक कुल के बीच में युद्ध हो रहा है। और युद्ध का कारण क्या है, पहले श्लोक में युद्ध का कारण दिखता है, समवेता युद्ध का। अब जो शब्द कह रहा है धृतराष्ट्र, ये युद्ध का कारण है। माम का पांडवाश्चैव, माम का मेरे बच्चे, पांडवास पांडु के बच्चे, ये नहीं कह सकता है हमारे बच्चे। अगर हमारे बच्चे का होता तो ये युद्ध होता ही नहीं। जहां मेरा तेरा होता है परिवार में, वहां युद्ध होता है, वहां झगड़ा होता है। भाई पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र कहता है मेरे पुत्रों के बीच में, तो माम मेरा तेरा हो गया ना। माम का शब्द युद्ध का सूचक है, कारण है, इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है धृतराष्ट्र आंखों से अंधा नहीं था, पुत्र मोह की पट्टी से वो हृदय से अंधा था। अपने पुत्रों को कौरव कुल से पांडवों को अलग कर दिया, एक ही वंश है कौरव का, लेकिन उस पांडवों को अलग कर दिया, वो तो पांडु पुत्र कर दिया, अपने को कौरव ही समझ रहा है। ये उसके शारीरिक आंखों की नहीं, वो अंदर से भी पुत्र मोह में अंधा था। और ये धृतराष्ट्र स्वयं अपने मुख से अक्रूर को कहा है। जब अक्रूर कृष्ण के भेजने के ऊपर हस्तिनापुर में पांडवों और कुंती का समाचार लेने गया था, तब अभी पांडव छोटे बच्चे थे। कुंती ने कहा था जैसे बाघों के बीच में हिरणी गिर जाती है, ऐसे मैं यहाँ हस्तिनापुर में बाघों के बीच में अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत संताप सह रही हूँ। और अक्रूर ने जब कहा धृतराष्ट्र को के न्याय क्यों नहीं करते, अपने बच्चे और पांडु के बच्चे को अलग क्यों समझते हो, बोलते हैं अक्रूर आप जो कह रहे हो ये सत्य है, ये मैं मानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन पुत्र मोह के कारण आप ये शिक्षा ऐसे है जैसे बिजली पहाड़ के ऊपर चमके और फिर चली जाए, आपकी बात मैंने सुनी लेकिन मेरे अंदर नहीं जा सकती, मैं पुत्र मोह में अंधा हूं। विदुर को रात को बुलाया धृतराष्ट्र ने कहा विदुर बहुत बड़ी समस्या है, दुर्योधन जिद कर रहा है, पांडवों को कुछ देना नहीं चाहता है। तब विदुर ने कहा, विदुर की नीति, विदुर धर्मराज है, महाराज अगर राज में एक पूरा नगर खराब हो तो राज से निकाल देना चाहिए, गांव में एक घर खराब हो तो उसको निकाल देना चाहिए, घर में एक सदस्य खराब हो तो उसको निकालना चाहिए, शरीर में एक उंगली खराब जाता है और उसकी वजह से शरीर को समाप्त होने की खतरा हो जाए तो उंगली को काट लेना चाहिए। ये दुर्योधन आपके कुल का घातक है, ये गैंग्रीनस फिंगर है, ये कैंसर है तुम्हारे कुल में, इसको नहीं काटोगे तो ये कुल का नाश कर देगा। ये विदुर धर्मराज ने युधिष्ठिर को ऊंची आवाज में कहा कि महाराज आंखों से नहीं देखते हो, कानों से सुनते हो तो सुन लो कि ये कैंसर कौरव वंश का सर्वनाश कराएगा। उस वक्त दुर्योधन अंदर प्रवेश किया, उसी वक्त दुर्योधन के साथ कर्ण था और शकुनी था और दुशासन था, ये चंडाल चौकड़ी चार के चार अंदर आए और आते ही काका हमारा नमक खा के हमारे खिलाफ बोलता है, दूसरा कोई होता तो गर्दन काट दिया होता, अभी इसी वक्त हमारे घर से निकल जाओ। विदुर को निरादर करके घर से दुर्योधन ने निकाला और रात को विदुर धनुष बाण छोड़ रख के निकल चला गया और भगवान को ऐसी प्रार्थना की, श्री कृष्ण बड़ी कृपा की, इस बड़ी षड्यंत्र की राजनीति और कुल घात को देखने से बचा लिया, अब मैं साधु बन के तीर्थ यात्रा करूंगा। इस अपमान ने विदुर को बड़ा सम्मान दिया, उद्धव का संग हुआ, मैत्रेय का शरण लिया। जब तक इस दुनिया में अपमान नहीं होता है ना, तब तक भगवान का शरण लेना भी संभव नहीं। वैसे भागवत के 11 स्कंध में लिखा है कि ये शरीर मिला ही अपमान सह सह कर एक दिन ये निर्णय करने के लिए है कि यहाँ कभी संसार में न सुख और सम्मान मिलना नहीं है, इसलिए भगवान की शरण लेनी चाहिए, मिला ही इसके लिए है, एक अनुभव करने के लिए मिला है मानव शरीर में। माम का पांडवा चैवा, और भी जो आए हुए राजा दोनों पक्षों के, तो ये मेरा और तेरा घरों में आप अगर करोगे परिवारों में, तो हमेशा कुल में झगड़ा रहेगा। उधारता से अपने कहने से, अंग्रेजी में कहा कहावत है, पहले संस्कृत में कहावत है, मम ममेति इति विष, मैं और मेरा, ये दो शब्द पॉइजन है, विष है। इदम न मम इति अमृत, ये मेरा नहीं है, ये भगवान तेरा है, ये अमृत है। इसलिए जितने भी यज्ञ होते हैं वेदों के अंदर, उनमें कहा जाता है इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपका है भगवान। इति गोविंदाय नमः, इति गोविंदाय, इदम न मम। और अंग्रेजी में कहा जाता है आजकल आई एंड माय गिव, आई एंड माय एंड सेव वी, अपना कहने से सबको साथ ले लो, मेरा और तेरा कहोगे तो हमेशा जन संसार में झगड़ा रहेगा। तो गीता पढ़ के ये एक चीज अपने जीवन में अपने परिवार में उतारनी चाहिए, मेरे तेरे को छोड़ के अपना कहना शुरू करना चाहिए। अपना शब्द भक्तों के अंदर भी, अपना संस्था, अपना सबको जोड़ के, मेरा नहीं, हमारा इसका नहीं, अपना, ये अपना शब्द जोड़ने से आप सबको जोड़ो। व्यास देव जब प्रार्थना करते हैं तो सबको लेके करते हैं, अकेले नहीं करते हैं, बहुवचन में करते हैं, सत्यम परम धीमहि श्री कृष्ण वयम नमोहु, हम सब मिलके श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, सबको गोद में लेकर प्रार्थना करते हैं, भविष्य में आने वाले सब भक्तों को साथ लेकर प्रार्थना करते हैं। तो अपने जीवन में, परिवार में, प्रचार में अथवा बिजनेस में हमेशा दूसरों को साथ रखने का भाषा बोलोगे तो कम कलह होगा, नहीं तो कलह मेरे और तेरे हमेशा कलह में पूर्ण हो, कलह होगा। तो गीता सीखने का अर्थ ये नहीं है कि धृतराष्ट्र ने कहा मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसका ये भी अर्थ है कि आप जीवन में अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने भक्त मित्रों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हो, धृतराष्ट्र की तरह करते हो या विदुर की शिक्षाओं के अनुसार करते हो। तो गीता का जीवन में अनुभव लाना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी होनी चाहिए। हनुमान को जब कहा गया कि जामवंत ने कि आप अब जाओ सीता की सुधि लेकर आओ, तो हनुमान ने कहा एक शर्त है, आप लोग, आप में से कोई यहां से जाएगा नहीं जब तक मैं नहीं आऊं, आप सब यहां रहिएगा, क्योंकि मैं अकेला इस काम का श्रेय नहीं लेना चाहता हूं, हम सब साथ आए हैं, ये सारा काम हम सब साथ जाके बताएंगे, हमने किया है, मैंने किया है, ये मैं नहीं कहूंगा। हनुमान की सफलता के पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राम की कृपा के साथ साथ सहयोगियों का साथ है। उसने ना जामवंत को कहा, ना अंगद को कहा, ना नल को कहा, ना नील को कहा कि आप लोग चले जाइए, मैं लेके आ जाऊंगा खबर। और जब समाचार देने का समय आया तो जामवंत अंगद बोले, जामवंत बोले, हनुमान पीछे बैठे थे, उन्होंने कहा हनुमान लाया, हनुमान ने नहीं कहा कि मैं लाया। जब भगवान ने कहा हनुमान आप अपने मुख से समाचार कहो, तब हनुमान बोले। तो एक भक्तों में दास भक्ति का आचार्य हनुमान है, श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित हैं, कीर्तन के आचार्य सुखदेव हैं, और दास भक्ति के आचार्य हनुमान है। और हम सबका नाम दास है, हमें दीक्षा के बाद हमको सबसे उत्तम अधिकार दास का मिलता है। और इस दास भाव में हनुमान की इस शिक्षा को जीवन में उतारो, ये काम हमने किया है, मैंने किया है कभी नहीं कहना। और ये प्रभुपाद के इस भगवत गीता के प्रीफेस में है। लोग मुझे कहते हैं कि मैंने कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की, मैं कहता हूं इस संस्था का संस्थापक भगवान श्री कृष्ण है। प्रभुपाद के शब्द ये है, ये स्थापना कृष्ण भावना की श्री कृष्ण ने की है, मेरा कोई भी थोड़ा इसमें श्रेय है तो मेरे गुरु ने मेरे को सेवा दी थी, मैं उनकी सेवा करने में आया हूँ, सफलता का श्रेय मेरे गुरु लिखा है। सच सच 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को श्रेय जाता है। ये शब्द लिखे, ये गीता पढ़ने से पहले प्रीफेस को हजम करने का प्रयास करो, उसमें प्रभुपाद का मूड और मिशन है, उद्देश्य है प्रभुपाद का। श्रेय अपने गुरुजनों को दो, अपने वैष्णव भक्तों को, दूसरों को दो, अपने को हमेशा बहुत पीछे और निम्र भाव में रखो, ये भगवान को पसंद है। तो गीता का पहला श्लोक की गलती करने वाला इस संसार में हमेशा झगड़े में रहेगा, चाहे वो भक्तों का संघ हो, चाहे परिवार हो, चाहे कारोबार हो। जहां मेरा मेरा किया वहां झगड़ा, मैं मकरी करती है और उसको कसाई गर्दन काटता है, मैं गर्दन कटेगा। तो मैं छोड़ दीजिए और सबको साथ लेके चलिए, ये गीता की पहली शिक्षा है और ये प्रभुपाद का मिशन है कि सारा श्रेय हरि गुरु वैष्णव को जाता है। कृष्ण इसका संस्थापक आचार्य है, उसने कृष्ण ने गीता दी है। गीता मेरे बाप की नहीं है, मेरी नहीं है, ये कृष्ण की गीता का मैं प्रचार बात बता कर रहा हूं। तो इसका संस्थापक कृष्ण हुआ ना, मैं तो गुरु की सेवा कर रहा हूं, तो जिसकी सेवा कर रहा हूं श्रेय तो उसको मिलेगा ना। तो ये पहले श्लोक की शिक्षा भक्तों के हृदय में अथवा परिवार वालों के हृदय में होनी चाहिए। हम शब्द कहो, मैं तू तेरा, ये शब्द भाषा से निकाल दो तो शांति हो सकती है, नहीं तो ये युद्ध चलता ही रहेगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध माम का पांडवास्व, फिर कहते किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया। प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन में कहते हैं, ये ऐसे लग रहा है किसी के सामने भोजन परोस के थाली में पानी का गिलास रखा, रोटी रखी, सब्जी रखी, दाल, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, खीर सब रखा, फिर कोई पूछे कि उसके आगे भोजन परोसा फिर उसने क्या किया, ये मूर्खता नहीं है। अरे खाया होगा और क्या करेगा भाई, भोजन किसी के सामने परोस करके फिर पूछे उसने क्या किया, तो ये कोई बात बनती नहीं। इसका मतलब कोई खास बात हुई होगी, बताओ। ऐसे तो नहीं कि मक्खी पड़ गई, भोजन उठा लिया। इसके पूछने का, अगर कोई पूछे कि फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि उसने नहीं खाया, अथवा खाया, खाने से पहले कुछ गड़बड़ हुई है, तब तो ये प्रश्न उठता है, नहीं तो प्रश्न तो नहीं उठता है ना। ये प्रश्न तब उठता है कि कोई गड़बड़ हुई है। तो ये प्रश्न इसलिए उठता है कि अगर भीष्म पितामह धराशायी हुए तो मुझे शुरू से बताओ, पहले से बात। आपने कभी सुना है, कभी कोई आपको अचानक खबर आती है तो आप बोलते हो नहीं नहीं पहले से बताओ, शुरू शुरू बताओ क्या हुआ पहले, अगेन रिपीटेड फ्रॉम द बिगनिंग। ऐसे ये हमारी एक वाचा ऐसी है, ये प्रक्रिया ऐसी है। जब ये धृतराष्ट्र ने कहा कि वहां विशेष क्या हुआ था, मुझे पहले से बताओ, तो संजय दूसरे श्लोक में बोलता है। इस पहले श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती बालपाद की टीका से प्रभुपाद ने दो शब्द बहुत सुंदर लिखे हैं कि क्षेत्र का एक अर्थ खेत भी होता है, और खेत के अंदर जब कोई बीज बोते हैं ना तो उसके साथ घास भी उगता है, तो अच्छे किसान को घास निकालना चाहिए तब अन्न बढ़ेगा। तो ये कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में धर्म का बीज धर्मराज था और घास रूपी दुर्योधन और उसके संगी, ये काला था, घास था जिसको निकालना जरूरी था, नहीं तो खेत के अंदर धर्म का बीज जो है वो फलता फूलता नहीं। तो एक क्षेत्र की परिभाषा खेत भी है, तो अगर ये खेत है तो इसके अंदर धर्म का धान बचाना है और काला घास निकालना है, तो दुर्योधन और उसकी पार्टी के काले लोगों का भगवान को निकाल के अच्छी तरह से दुर्योधन को स्थापित करना था। अब दूसरा श्लोक संजय बोलता है, संजय वाच पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीं च मम। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की सेना को देखा। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मम, और सीधा आचार्य के पास गया। कौन से आचार्य? द्रोण आचार्य के पास। जाना कहाँ चाहिए? सेनापति के पास। सेनापति भीष्म पितामह है, उधर नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास गया और कहा क्या? पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रोणाचार्य, गुरुजी देखो आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न ने कितनी महान सेना की रचना की है, चांदाकार का व्यूह बनाया है, सुंदर एक व्यूह बनाया है। ये दूसरे श्लोक में संजय सबसे बड़ी दुर्योधन की अपराध युक्त उद्भव भाषा का वर्णन कर रहा है। दुर्योधन का पहला अपराध यह है, गुरु को कहता है देखो, आदेश दे रहा है गुरु को, चलो देखो, और 25वें अध्याय भगवत गीता के पहले अध्याय में देखना, कृष्ण अर्जुन को कहेगा देखो, कृष्ण अर्जुन को कहेगा। आपको ये मैं अभी बता दूं, पहले अध्याय भगवत गीता में आधा श्लोक कृष्ण ने बोला है, वहां भगवान वाच नहीं है लेकिन भगवान के वचन है। वो जब तक नहीं समझेंगे और देखेंगे तब तक कभी समझ में नहीं आएगा कि अर्जुन शंख बजाने के बाद युद्ध क्यों नहीं कर रहा है। वो जो आधा श्लोक कृष्ण ने कहा है वही टर्निंग प्वाइंट है, वही भगवत गीता देने का संकल्प है भगवान का, वही उद्घाटन है गीता के अवतार का। वहां श्लोक कैसे है? वाच पार्थ पश्येताम कुरुमिति। कृष्ण कहते हैं पार्थ, ऐसे पीठ थपाके अर्जुन की, पार्थ पश्येताम देखो, कुरुनिति तेरे सारे रिश्तेदार हैं, सारे तेरे कुल के हैं। अब आप दोनों का कंपेयर करो, दुर्योधन अपने गुरु को दिखा रहा है और कृष्ण अपने शिष्य को दिखा रहा है, तो सफलता किसको मिलनी चाहिए? कौन मर्यादा में है और कौन मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है? दुर्योधन ने मर्यादा का उल्लंघन किया, गुरु को दिखाने का, उंगली से दिखाने का दुस्साहस किया राजनीति के कारण, और करुणा के कारण कृष्ण को गीता देनी थी केवल द्वापर के अंत के लिए नहीं, भविष्य में इस ब्रह्मा जी के दिन में, जब तक ये ब्रह्मा जी का दिन अभी रहेगा तब तक के लिए इस गीता को देने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया। देखो तुम्हारे अपने गुरुजन हैं, पितामह हैं, ये कहकर अर्जुन के हृदय में मोह को कृष्ण ने डाला। कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में मोह को डाला गीता को प्रकट करने के लिए। इसलिए पहला अध्याय गीता का गीता के अवतार की भूमिका है, वो परिस्थितियां हैं जिसमें गीता का अवतार हुआ है, गीता के अवतार की भूमिका है। इस अध्याय का हमारे आचार्यों ने तो सेना का निरीक्षण नाम लिखा है, सामान्य गीताओं में अर्जुन का विषाद योग इसका नाम है, लेकिन गीता के अवतरण की भूमिका का पहला अध्याय है। कैसे गीता का अवतार हुआ, उसका जो भूमिका है वो ये पहला अध्याय। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ दुर्योधन सदा आचारम उपसंगमय वचनम अब्रूहीत। बड़ी व्यूरचना देखी पांडवों के पुत्रों की। दुर्योधन अपने रथ को लेकर द्रोणाचार्य के पास गया और कहा, देखो गुरु, आपके शिष्य ने, नाम नहीं दिया उसका, द्रुपद पुत्र कहा। ये बहुत बड़ी राजनीति की भाषा बोला है। क्या राजनीति की भाषा है? पहली राजनीति ये है दुर्योधन की, भीष्म हमारा अपना दादा है, ये ब्राह्मण है, इसके पास मैं जाऊंगा तो भीष्म क्षत्रिय नाराज नहीं होगा, ब्राह्मण को पहले प्रणाम करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं भीष्म के पास जाऊंगा तो ये गुरुजी नाराज हो जाएगा, गुरुजी को पहले राजी करना चाहिए, लेकिन गुरुजी को अपने पक्ष में करना चाहिए, क्योंकि ये गुरुजी हमारे द्रोणाचार्य और ये दादा भीष्म ये लड़ हमारी तरफ से रहे हैं, लेकिन इनका दिल पांडवों की तरफ है। ये दुर्योधन जानता था, ये दुर्योधन ने सुना था। जब प्रणाम के बाण अर्जुन ने द्रोणाचार्य के चरणों में और भीष्म के चरणों में दूर से फेंके, तो उन्होंने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को कहा, क्या बोला, अगर कहा विजयी भव तो ये दुर्योधन ने सुना ही होगा ना कि बाबा लड़ता हमारी तरफ है, आशीर्वाद विजय का उदर देता है। ये तो आश्चर्य है ना, भाई धर्म की जय हो, ऐसा बोला होगा, मैं धर्मराज की जय हो, तो तुम तो धर्मराज हो नहीं, तुम दुर्योधन हो, दुर्बुद्धि हो। तो बड़ा संदेह था दुर्योधन के मन में। अब क्रोध दिलाना है द्रोणाचार्य को, ब्राह्मण है ना, क्रोध दिलाना है। किस बात का क्रोध दिलाना है? पुरानी बात याद दिलानी है, कौन सी, द्रुपद का नाम लेकर और उसके बेटे का नाम लेना है। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक कक्षा में साथ एक गुरु के पास पढ़ते थे, दोनों मित्र से घनिष्ठ। और बचपन में एक दिन द्रुपद ने कह दिया था, जब मैं बड़ा बनूंगा, राजा बनूंगा ना, आधा राज तुम्हारा, तुम मेरे मित्र हो, आधा तुम्हारा आधा हमारा, बचपन में कह दिया था। दुर्योधन द्रोणाचार्य बड़े हो गए, विवाह हो गया कृपी से, कृपाचार्य की बहन से, ये तो दोनों का उत्पत्ति भी तो उससे हुई है, कुंभ से, अपने आप ये अयोजन है, दोनों अनुजों ने जय कृपा और कृपी, अश्वत्थामा का जन्म भी हो गया बेटे का, घर में दूध भी नहीं, गाय। तो द्रोणाचार्य के मन में आया कि मेरा मित्र है द्रुपद के राज में जाता हूँ पांचाल में, और द्रुपद के पास चला गया। द्रुपद ने कहा, मेरे मित्र आपको याद है बचपन में आपने कहा था आप आधा राज दे देंगे, अब मेरे को आवश्यकता है मेरी सहायता के लिए। बोला, ब्राह्मण बचपन की बातें स्कूल की को राजनीति में चलेंगे, अभी आधा राज आपको मैं दूंगा, तुम्हें जरूरत है कुछ, दान चाहिए, गाय चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए तो ले जाया, बाकी मूर्ख बचपन की बातें कोई अभी की जाती है। द्रोणाचार्य को बहुत अपमान लगा, वहां से वापस लौट के आया और लौट के आने के बाद कौरव कुल का गुरु बना। भीष्म पिता मैंने नियुक्त किया कि ऐसा आचार्य नहीं मिलेगा, परशुराम का शिष्य है बहुत बड़ा, इसलिए ये गुड़गांव जो है ये द्रोणाचार्य के नाम से, ये गुरु गांव था, ये द्रोणाचार्य यहाँ सर्दियों में शिक्षा देता था पांडवों और कौरवों को, और गर्मियों में देहरादून के पास एक स्थान है वहां शिक्षा दिया करते थे, और इनके क्षेत्र में लाक्षाग्रह जो है जहाँ पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था वो मसूरी से नीचे है। आज भी लाक्षाग्रह का वो स्थान देखा दर्शनीय है, वहां एक मंदिर है। तो ये उस वक्त ये सारा क्षेत्र पांडवों का था, कौरवों का था। तो जब शिक्षा पूरी हुई तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने कहा, महाराज द्रुपद को कोई बंदी बना के लाए मेरे पास, उसको पराजित करना है। दुर्योधन ने कहा, हम सेना ले जाते हैं, भीष्म पिता में आदि। बोला, नहीं, दक्षिणा तुमको देनी है, तुम अपने बल से जाओ लेके आओ। तब अर्जुन अकेला द्रुपद को ऊपर विजय प्राप्त करके द्रुपद को बांध के लाया बंदी बनाकर। द्रोणाचार्य ने कहा आपने तो मेरे को आधार आज नहीं दिया, आज आप मेरे शिष्य के द्वारा प्राप्त हुए हो ना, तो अब तुम्हारा राज तो हमारे शिष्य का हो गया और शिष्य ने मुझे गुरु दक्षिणा में दे दिया, लेकिन मैं वचन से घूमने वाला नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, आधा राज में आपको देता हूँ, आधा मैं मेरे बेटे अश्वत्थामा को दे देता हूँ। द्रुपद को आधा राज दिया, द्रुपद वहां से गया, मतलब मित्र हूँ ये बोला, अब मैं वचन पालता हूँ, जाओ आधा राज तुमको देता हूँ। द्रुपद वापस आया, क्षत्रिय था, बहुत क्रोध था कि मेरा अपमान किया है, मेरे को प्रास भी कराया और मेरे को आधा राज दे के दान के क्षत्रिय दान नहीं लेता है, बड़ा अपमान है मेरा। आते ही द्रोणाचार्य द्रुपद ने पंडितों को बुलाया, बोला यज्ञ करो और यज्ञ के अंदर से मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए था जो द्रोणाचार्य का मृत्यु का कारण बने। अब यज्ञ शुरू हुआ, यज्ञ के कुंड से द्रौपदी निकली, इसलिए द्रौपदी को याज्ञिका बोलते हैं, एक नाम उसका याज्ञिका है, यज्ञ से उत्पन्न होने वाली, वो द्रुपद की पुत्री नहीं है, अयोनिज है, अशुक्ला है, वो वीर्य से उत्पन्न नहीं हुई है, वो यज्ञ कुंड से निकली है, वो भगवान श्री कृष्ण की सखी है, कृष्णा उसका नाम है, एक नाम कृष्णा है द्रुपति का। और उसके बाद दृष्टद्युम्न निकला उस यज्ञ कुंड से और द्रोणाचार्य के पास, ये दृष्टद्युम्न शिक्षा के लिए गया गुरु के पास, और द्रोणाचार्य जानता था कि ये मुझे मारेगा, मेरे को मारने के लिए इसको द्रुपद ने यज्ञ से उत्पन्न किया, फिर भी ब्राह्मण इतना उदार था सारी शिक्षा उसको दी, कोई भेदभाव नहीं किया जानते हुए भी। आज दुर्योधन याद दिला रहा है गुरु के जख्मों के ऊपर नमक लगा के थोड़ा तेज कर रहा है, ये आपके शत्रु द्रुपद जो आपको मारने के लिए ये दृष्टद्युम्न को पैदा किया है ना, ये सेनापति है पांडवों का और ये कितना अच्छा व्यू रचना किए महाराज, देखो तो सही गुरुजी, इसका मतलब द्रोणाचार्य को क्रोध आना चाहिए, ये शत्रु है मेरा, मेरे को मारने के लिए आया है, तो मैं पांडवों के लिए कोई भी अब दया का भाव नहीं रखूं, ये उसका उद्देश्य था, ये उद्देश्य दुर्योधन का था। इन शब्दों से ये लगता है पश्चिम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चौ व्यूढ़ अतसूरा महेश वाचा भीमार्जुन समायुद्धे। अब तो कहता है गुरुजी देखो भीम और अर्जुन के समान सारे महान योद्धा वहां खड़े हैं, महारथी है, द्रुपद है, महाराज विराट नरेश है, ये सब अजय है सारे, उस साध्य की है और ये महारथी है सारे बड़े तिमंगल है। द्रोणाचार्य को जवाब देना चाहिए ना, आखिर इतना दुर्योधन बोला जा रहा है तो द्रोणाचार्य को कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन भगवत गीता में नहीं लिखा है द्रोणाचार्य उवाच। भाई मूर्ख शिष्य कुछ बोले बकवास करे तो गुरु बुद्धिमान को चुप रहना चाहिए, द्रोणाचार्य चुप साधियो ना, ये मुझे उत्तेजित करता है अथवा ये मूर्ख पॉलिटिकली मुझे एक्सप्लॉइट करना चाह रहा, चुप रहे गुरुजी शांत रहे कुछ भी नहीं किया। भीष्म पिता मैंने दूर से देखा कि ये ब्राह्मण ये मेरे दुर्योधन की हिम्मत बढ़ाने के लिए बोलने नहीं जाएगा। अब दुर्योधन ने देखा कि मैं उनकी तो मैं अभी गुरुजी की कुछ प्रशंसा तो करनी चाहिए, बोला गुरुजी वो पांडवों की सेना का मैंने वर्णन किया वो तो ठीक है, भवान अब देखो हमारी तरफ, भवान आप भीष्मच्च कर्णच्च हमारी सेना में भी तो आप हैं, पहले पहले सामने उसको कहते हैं आप हैं, भीष्म पितामह है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, किसी के मारने से मरने वाला नहीं है और गुरुजी आपके शिष्य हैं वो सामने, वो में से कोई आपको नहीं मार सकता है और कर्ण ये तीनों परशुराम के शिष्य हैं, भीष्म द्रोण कर्ण तीनों परशुराम के शिष्य हैं और ये तीनों अपने आप में अजय योद्धा है, ये किसी के मारने से मरने वाले नहीं है। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समंतंजय, कृपाचार्य जीवित है अभी, वो बाद में परीक्षित का गुरु बना, वो बाद में जीवित रहा युद्ध में से, मरा ही नहीं, तो अजय है सारे ऐसे ऐसे योद्धाओं का नाम लेके और फिर कहा ये सब त्यक्त्वा देहम मद अर्थे मेरे लिए ये प्राण की आहुति देंगे। ये असुरी स्वभाव है। ये अर्जुन, ये जो दुर्योधन कह रहा है ना, ये 16वें अध्याय में गीता में जाके पढ़ना, वहां लिखा है ये सब मेरे को सुख देने के लिए, अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए आए हैं। और अर्जुन कहेगा मैं इनको मार के पाप करने से भिक्षा मांग के जीना श्रेष्ठ समझता हूँ। देखो दोनों में अंतर कितना है। वो देवी संपदा का है, करुणा उसके हृदय में है, राज की लालसा नहीं है, त्रिलोक के राज की, और यहाँ सारों को बहावती देके खुद राजा बनना चाहता है। ये सब मेरे लिए मर शरीर त्यागने को आए हैं, ये मर जाएंगे, मैं राज करूंगा, ये उसका अर्थ है। न दर्थे त्यक्त जीविता, ये जब और फिर कहा पर्याप्तम भीष्म, देखो भीमसेन उनके तरफ से इतना बलवान है उसका बल, और हमारी तरफ भीष्म रक्षा कर रहा है। अब 11 अक्षौणी सेना कौरवों की है, 7 अक्षौणी पांडवों की है, 4 अक्षौणी सेना ज्यादा है, और योद्धे भी बड़े वीर उनकी तरफ है। उधर तो अर्जुन और भीम महान योद्धों की लिस्ट में, बाकी सब है तो योद्धे सादे की, लेकिन ये सब उनसे ज्यादा बलवान है। ये लिखा है भीषम द्रोण तटा जयद्रथ जला गंधार नीलो तपला शल्य विक्रम विक्रण घोर मकरा। ये तो ऐसी भयानक महाभारत की युद्ध, एक नदी है जिसके दोनों किनारे पे भीषम और द्रोण खड़े हैं, कोई अंदर जा नहीं सकता है, और अंदर कोई चला गया तो कर्ण उसके अंदर घोर कुल की तरह है, डुबा देगा। दुर्योधन है, कर्ण विक्रण है, ये सोम दत्त है, ये सब बड़े सिमंगल है, जयद्रथ है, इसको पार करना संभव नहीं है। और अंत में एक शब्द लिखा है कई वर्ष का केशव, ये तो केशव की कृपा है कि अर्जुन ऐसी भयानक नदी को पार कर गया, ये कृष्ण की कृपा से। ये सब धराशाही महाभारत के अंत में एक जगह आता है, जब युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा नीचे उतरो। आप अर्जुन कहता है गुरुजी आप पहले उतरिए, तुम पहले उतरो अर्जुन, जल्दी करो। नहीं गुरुजी आप तो, भगवान ने धक्का दिया, चल उतर। जैसे अर्जुन नीचे पांव रखा, भगवान ने एक पांव रथ से नीचे उतरा, एकदम आग में सब रथ जल गया, समाप्त हो गया। और आश्चर्य से अर्जुन देखता है ये क्या हो गया। कृष्ण कहते हैं इतने सारे महारथियों के दिव्य अस्त्र जो कब को इस रथ को और तुमको भस्म कर चुके होते, जब तक मैं आगे बैठा था ये आपका बाल भी बांका न कर सके। अब मेरे उतरने के बाद इनका प्रभाव इस रथ के ऊपर हुआ, इसलिए मैंने तेरे को कहा पहले उतर भाई। अब मैं उतर जाऊं, युद्ध के बाद ही तुम्हारी आहुति दे दूं, तो फिर तो मेरे दार्शनिक का करने का कोई तात्पर्य ही नहीं रह गया। एक और अर्जुन का पुत्र है उल्पी से, उल्पी मणिपुर की कन्या थी, और अश्वमेध दिग्विजय के समय अर्जुन ने उससे विवाह किया था। उसका एक पुत्र हुआ था उससे, उसका नाम भागवत में है बब्रुवाहन। बब्रुवाहन वो बब्रुवाहन एक दिन आके कहता है पांडवों को कृष्ण के सामने, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है। बोला महाभारत का युद्ध है, अब उसमें जा रहे। बोला इतने सारे टाइम क्यों खराब कर रहे, किस किस को मारना है मुझे बोलो, लिस्ट दे दो, अथवा इशारा कर दो, मैं समाप्त करके आता हूँ। तो भगवान ने ऐसे परीक्षा लेने के लिए कहा एक बाण मालो इस पेड़ में, जितने पत्ते हैं उन सबको तुम्हारा बाण भेद के आए। उसने एक बाण मारा, एक एक पत्ते में सोराख किया और भगवान के चरणों की तरफ बाण घूमा। एक पत्ते के ऊपर भगवान पांव रख के बैठे थे तो उधर घूम रहा था। भगवान ने ये देखा तब अपना सुदर्शन निकाला और उसका गर्दन काटा। अर्जुन ने कहा ये क्या किया श्री कृष्ण, ये अकेला सबको मारता, हमारा युद्ध करने इसकी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने पांव उठाया तो देखो एक पत्ता नीचे था, इसके ऊपर इसका बाण घूम रहा था, ये सब पत्तों को छेदन कर लिया, इसका मतलब ये जो चाहता वो कर सकता था। ये तो अच्छी बात है, सबको मार के आता। बोला वो तो ठीक है, ये कानून अपने हाथ में ले रहा था। आप लोगों ने कितने कितने सबने वचन किया है। भीम ने कहा है कि मैं जांग तोड़ूंगा दुर्योधन की, मैं दुशासन का खून पीऊंगा, ये तुम कहां से लाओगे, ये मार के आएगा तो इतने सारे तुम्हारे वचन कैसे पूरे होंगे। इसलिए ये कानून इसको हाथ में लेने को नहीं दिया जाएगा, युद्ध होगा। तब बब्रुवान ने कहा, उसके गर्दन ने, भगवान का कटा हुआ गर्दन खत्म नहीं होता है वो तो उसका, वो भीमा का दूसरा है, ये अर्जुन का है उल्पी से। उसके गर्दन ने कहा, श्री कृष्ण आप जो करते हैं उचित है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है, एक बड़े नेजे के ऊपर इसका सर रख दिया जाए। पूरा युद्ध समाप्त हुआ, किसने कहा मैंने मारा उसको, मैंने मारा। तब श्री कृष्ण ने कहा बब्रु वाहन से पूछ क्या, वो देख रहा था किसने मारा। तब उसने जाके पूछा कि इस युद्ध में किसको किसने मारा, बोला एक सुदर्शन चक्र सबका गर्दन काट रहा था, बाकी सब ऐसे बाण ऐसे कर रहे थे जैसे खिलौने हो, काटे सबके गर्दन सुदर्शन चक्र ने। वो बब्रुक वाहन की पूजा राजस्थान में श्याम जी के नाम से होती है, वो कटा हुआ गर्दन है, वो उसको कृष्ण ने इस महाभारत को उसने देखा था। वो ये बब्रु वाहन है जो इस युद्ध में जिसका कृष्ण ने अपने हाथ से गर्दन काटा था। और उसने कहा कि ये तो सुदर्शन चक्र का सारा कमाल है, बाकी तो सब ऐसे बाण चला रहे थे। मैंने आपको बताया था एक बार किसी बहुत डरपोक को कहा कि तुमको सेना में भर्ती करेंगे, बेचारा बोला तेरी आई की टेस्ट करानी है, डरता डरता गया। डॉक्टर ने कहा देखो सामने क्या लिखा है, बोला कहाँ है, बोला दीवार पे, बोला दीवार कहाँ है, बोला अंधा कहाँ लेके आए हुआ, देखो दीवार का भी पता नहीं, तो डर रहा था। तो चार पांच और थे परीक्षा में, जा देखो वो लाल बत्ती है उसको हाथ लगा के वापस आओ, सब पांच मिनट में वापस आए, ये दो दिन के बाद वापस आया। बोला तुमको कहा लाल बत्ती को हाथ लगा के दो दिन क्यों लगाए, बोला वो ट्रक के ब्रेक की लॉक लाइट थी, मैं जाऊं तब तक ट्रक आगे चला गया, तो मैं तो दो दिन के बाद जब खड़ा हुआ तब वापस आया। भाई तुम्हें घर वाले बोले तुम्हें भर्ती होना है, और इसको डर लगे सुबह दूसरे दिन उठ के कहता है सुनो रात में स्वप्न में बहुत बड़ा भयानक युद्ध किया, शत्रु को मैं सामने अपना तलवार उठाया, एक बाजू था काट दिया, दूसरे से दूसरा बाजू, एक पांव काट दिया, दूसरा पांव काट दिया। हमने पूछा स्वप्न में तुमने बाजू काटे गर्दन के ऊपर तलवार क्यों नहीं चलाया, वो तो पहले कटा था तो मरे हुए को मार रहा था। तो असल में ये महाभारत में सबने जो है बाजू काटे है, गर्दन तो दुर्दर्शन चक्र ने काटा था, बाकी तो सब अपना दिल खुश कर रहे थे कि मैंने इसको मारा मैंने इसको मारा। और ये भीष्म पितामह कहेगा भागवत में कि कृष्ण आयु तो आपने सबकी छीन ली थी, लेकिन आपका दर्शन देके उनको सदगति भी दे दी, बाकी तो सबने बाण चला के अपना कर्तव्य पूरा किया, लेकिन काम तो आपने सारा किया था। तो यहां जब संजय, जब दुर्योधन ने ये कहा, जो संजय कह रहा है कि दुर्योधन के ये वचन है कि भीमसेन किस तरीके से युद्ध के व्यूह करके खड़ा है, उसकी बल बहुत ज्यादा है, हमारे तरफ भीष्म की तरफ चारों ओर खड़े जाओ, भीष्म के चारों ओर उसकी रक्षा करो। भीष्म ने कहा मेरी रक्षा करो, दुर्योधन बोल रहा है मेरी कोई रक्षा करने की जरूरत है कि मैं इसकी रक्षा करूं, भाई मैं ये तो उल्टा सेनापति है, उसके चारों ओर रथ तुम्हारे खड़े हो जाओ। भीष्म को आया कि मेरा ये बेचारा पोता डर रहा है, असल में भीष्म समझ गया कि इसको डर लग रहा है, डर असल में इसलिए लग रहा है कि सामने भगवान श्री कृष्ण को जो भक्त देखता है उसका दिल बढ़ जाता है, और जो शत्रु देखता है उसको मौत सामने दिखती है। जब कंस के रंगमंच में कृष्ण उतरे तो उसके साथियों ने कहा हमारा कन्हैया भैया आया है, देखो कितना खुश है। नंद बाबा कहता है मेरा लाला देखो आ रहा है, स्त्रियां कहती है कितना सुंदर कमनी है, इसका दर्शन करने से आंखों का तो आज फल ही प्राप्त हो गया। और कंस कहता है ये मेरे मौत है। तो कृष्ण को देखने से असुर का हृदय कांपने लगता है, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे उनका हृदय कांपेगा, असुरों का, असुरी प्रवृत्ति के लोगों का। भीष्म पितामह ने कहा ये मेरा पोता बहुत घबरा गया है, शंख बजाया, भीष्म ने सिंह सिंहनाद किया, ऐसा शेर की तरह धाड़ते हुए सिंह संघ बजाया कि दुर्योधन जरा हतोत्साह न हो जाए, मैं जब तक सेनापति हूँ तुम्हारी पराजय नहीं होने दूंगा। शंख बजाया, भीष्म ने शंख बजाया, सारे कौरवों ने अपने शंख फूंकने शुरू किए, बहुत हल्ला गुला शोर हुआ। अब पांडव की तरफ से कोई शंख नहीं बजा रहा है, सेनापति चुप करके खड़ा है, अर्जुन चुप कर खड़ा है, भीम चुप कर सब देख रहे हैं कृष्ण की ओर। तो कृष्ण शंख उठाया, पांच जन्यम ऋषि के तो कृष्ण शंख बजाया, न लड़ने आया न अस्त्र शस्त्र उठाएगा, शंख बजाने की क्या जरूरत थी। वो शंख भगवान के पास है ही भक्तों को विजय की घोष करने के लिए, भगवान के हाथ में शंख है ही इसलिए कि भक्तों को अभेदान देने के लिए, भय नहीं, भय खत्म हो जाता है, वैसे शंख बजाने से सारे भूत भाग जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि युद्ध कौन करना चाह रहे थे, कौरव के पांडव, शंख पहले किसने बजाया, तो इसका मतलब वो युद्ध के लिए आतुर थे ना। पांडव ने शंख बजाया, नहीं बजाया, किसने बजाया, कृष्ण, तो दूसरा युद्ध कौन कराना चाह रहा था, कृष्ण, पांडव तो पीछे खड़े थे, तो कोई आरोप कृष्ण पांडव के ऊपर नहीं लगा सकते है कि वो आते था ये युद्ध करा रहे थे। पांच जन्यम ऋषि केशो देवदत्तम धनंजय, और फिर धनंजय ने कहा अब कृष्ण ने शंख बजाया तो मैं तो फूंकता हूँ अपने देवताओं से दिए हुए शंख को। देवदत्तम धनंजय पांडरम दत्तवो महासंघम भीम कर्मा विरको धरा, तब तो भीम ने अपन और फिर अनंत विजयम कुंती पुत्रो याद राजा युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया, फिर सघोषो मणि पुष्प को मन, तो हम इन शंखों का सबका नाम है, लेकिन उनका कृष्ण अर्जुन के सारथी का नाम किसी को नहीं आता है, ऐसा कोई दुनिया में है? अर्जुन का सारथी कौन था, दुर्योधन का सारथी कौन था, किसी को मालूम भी नहीं है, पूरी महाभारत पढ़ोगे तो कोई नाम निकलेगा, वो भी चोटी की तरह झोटा होगा। अब आप देखिए एक के सारथी को दुनिया जानती है और एक का सारथी आज तक पता नहीं है कौन था, भाई भीष्म पितामह का सारथी कौन था ये भी पता नहीं है। देखो वैसे भगवान सबके सारथी हैं, भगवान करते ही काम सारथित्व का है। एक उदाहरण देते हैं, कहीं आग लगती है तो जलाता कौन है, अग्नि, लेकिन हवा के बगैर अग्नि जलाएगी, हवा सारथी है अग्नि का जलाने में, नाम अग्नि का आता है, काम हवा करती है। भगवान सबके सारथी है, काम भगवान करता है और नाम हमारा होता है, भगवान वैसे सबके सारथी, वो परमात्मा के रूप में सबके अंदर बैठे और सबके कर्मों के अनुसार उनके काम अपने तरफ से करा रहे। हम समझते हैं मूढ़ा हम करता हम इति मन्यते, हम मूर्ख हैं समझते हैं कि हम करता है, तो सारथी अर्जुन के को तो सब दुनिया जानती है, लेकिन किसी को एक कर्ण के सारथी का नाम प्रसिद्ध रूप से उसने सारथी मांग के लिया था कि मेरा सारथी शल्य बनेगा, क्योंकि अर्जुन से मेरा युद्ध होना है और एवं कोई भी सारथी मुझे कृष्ण के बराबर का दिख नहीं रहा है, कम से कम शल्य श्रेष्ठतम नहीं है तो श्रेष्ठतर तो है, और शल्य महारथी है और किसी का सारथी बने ये उसके लिए अपमान की बात है, लेकिन फिर भी वो कर्ण का सारथी बना। लेकिन एक शर्त के ऊपर कृष्ण ने एक उसको एक बहुत बड़ी कृष्ण ने वहां राजनीति की थी, बोला शल्य सारथी बनना कर्ण का और प्रशंसा करना अर्जुन की, उसको क्रोध आएगा, जब क्रोध आएगा तो उसकी मति अपने आप में भ्रमित हो जाएगी और तब वो उल्टा काम करेगा, तब वो मरेगा। वो सारथी उसको करवाने के बाद भी शल्य को कृष्ण ने इस तरीके से, क्योंकि शल्य से पहले छल हो गया बेचारे थे। देखो युद्ध जब होता था ना, जैसे कहीं भंडारा होता है, लोग भाग भाग के आते हैं ना, मंगाओ न मंगाओ लेकिन चलना होता है, ऐसे क्षत्रियों के लिए जब युद्ध होता था तो घर से अपना तलवार ढाल उठाते हैं और कहते किसी के तरफ भी जाओ, हमें युद्ध करना है, तुम्हारे तरफ या तुम्हारे तरफ, जो पहले ले ले उसके तरफ है, लेकिन युद्ध करना है हमको। उनको युद्ध लगता था जैसे खेल है और उसमें जाना है, इसके लिए हमने जन्म लिया है। तो अपना अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में जा, जो पहले मिलता था उसी की तरफ होते थे। शल्य घर से निकला था युधिष्ठिर की सहायता करने के लिए, वो भांजा है, वो माद्री का भाई है और नकुल और सहदेव दोनों का मामा है, तो सबका मामा है वो। रास्ते में दुर्योधन ने उतना इतना स्वागत किया, इतना स्वागत किया, सब जगह बड़े टेंट लगा के छप्पन भोग खिला के उसने कहा दुर्योधन इतना मेरा नहीं, मेरा युधिष्ठिर महाराज इतना मेरे भांजे ने स्वागत किया है, वैसे भी मैं उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देता हूँ। तब दुर्योधन कहता है, दुर्योधन आके कहता है, ये तो मामा जी हमने आपकी व्यवस्था की है। बोला फिर भांजा तुमने मुझको खरीद लिया, अब बोलो क्या करूं। बोला युद्ध हमारी तरफ करो। शल्य ने कहा हम तो क्षत्रिय है ना, युद्ध करना है उस तरफ या उस तरफ, हम तो आए युद्ध करने के लिए, जा रहे थे युधिष्ठिर की तरफ से, स्वागत आपने किया तो हम आपके ऋणी हो गए। और यही बात द्रोणाचार्य और भीष्म कहते हैं कि हम ऋणी हैं कुरु वंश के, और कुरु वंश के ऋणी है इसलिए हमको लड़ना इनकी तरफ से पड़ेगा, लेकिन धर्म की जय होगी ये हम जानते हैं। और दोनों को मालूम था, तीनों को मालूम था, कर्ण को मालूम था कि मैं मरने जाऊं मुझे जा रहा हूं, द्रोणाचार्य को मालूम था कि मैं प्राण त्यागूंगा, और भीष्म पितामह भी मरने के लिए तैयार थे, जानते हुए मरते हुए उस तरफ खड़े हुए। क्यों युद्ध किया? क्योंकि कृष्ण की ये इच्छा है। अगर ये तीन दुर्योधन की तरफ नहीं होंगे तो दुर्योधन कभी पांडवों से लड़ाई करने के लिए हिम्मत कर ही नहीं सकता। इन तीनों को उस तरफ खड़े होकर कृष्ण को खुश करना पड़ा, ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तीनों दुर्योधन की तरफ लड़े, लेकिन उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता। और ये दिखता है भीष्म पितामह से साक्षात कि भीष्म पितामह भागवत में कृष्ण उसको दर्शन देने के लिए गए। अगर कृष्ण उसको द्वेषी मानते, अगर पांडवों का शत्रु मानते तो कभी भी नहीं जाते उसके पास उसको श्रेय देने के लिए। बहुत साफ दिखता है कि कभी कभी भगवान के भक्त भगवान की इच्छा से शत्रु बनके भी भगवान से युद्ध करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे तीनों खड़े थे उस तरफ से, और मरने का जानते थे कि मरने वाले हैं, लेकिन मरने से डरते नहीं थे। और वैसे भी युद्ध में मरने के लिए जाने वाले वो तो निर्डर हुआ करते थे क्षत्रिय। वो तो माँ बेटे को तिलक लगाती थी और पत्नी पति को तिलक लगा के हाथ में तलवार देती थी और कहती थी युद्ध भूमि में छाती पे घाव खाओ के तो घर में आना, पीठ पे घाव हो तो हमारे घर में नहीं आना। ये तो वीरों का, ये तो वो तो वीर, एक वीर बहुत बड़ा एक हमारा वृक्षा था, वो समाप्त हो गया अभी, अब वो बातें नहीं रह गई। लेकिन ये युद्ध इतना अद्भुत था, दिन में एक दूसरे का गला काटते थे और शाम को साथ बैठ के भोजन करते थे, कोई शत्रुता रात को नहीं थी बैठने के बाद। युद्ध धर्म का था, धर्म के ऊपर अपने कर्तव्य से लड़ते थे, लेकिन शाम को बैठ के खेलते थे, कुछ दो दूसरे दिन सुबह फिर युद्ध करते थे। इतना बड़ा धर्म का युद्ध कहीं हुआ नहीं। और युद्ध की नीति तो भीष्म के धराशायी के बाद युद्ध की नीति टूटती है, फिर अधर्म का युद्ध होना शुरू हुआ, तब तक धर्म का युद्ध रहा। अब जब ये शंख बजे तो पांडवों के शंखों का प्रभाव क्या पड़ा, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, उनके हृदय कांपने लगे, वो शंख की ध्वनि से हृदय कांपने लगे, बहुत भयभीत हो गए। कौरवों के शंखों से तो सिर्फ शोर हुआ, लेकिन पांडवों के शंखों ने भयभीत कर दिया सबको। अब शंख बज गए, इसका मतलब युद्ध शुरू होना चाहिए। उस वक्त अर्जुन पहली बार बोला है और कृष्ण की धनुर्मय, अर्जुन ने अपना धनु उठाया, गांडी उठाया, उसकी चंकार की है। और वहां महाभारत में लिखा है कि बाण द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह चरणों में प्रणाम के बाण डाले हैं, प्रणाम किया है। और फिर कृष्ण की ओर देखते कहते हैं, दिव्य संघ रथ है, अग्निदेव का दिया हुआ रथ है, कपि ध्वज अर्जुन का एक नाम है कपि ध्वज, जिसके रथ के ऊपर हनुमान का पताका है, भगवान गरुड़ ध्वज है, भीष्म के रथ के ऊपर शेर का चिन्ह है। हर एक के रथ को दूर से पहचाना जाता था कि किसका रथ है, ये संघ किसका है वो जानते थे, हर एक के संघ के आवाज को जानते थे, हर एक के रथ के चिन्ह को जानते थे। अब यहाँ कपि ध्वज के ऊपर कथा कल करेंगे। कपि ध्वज शब्द सारी रामायण को लेकर भगवद गीता में आएगा। एक ये शब्द से कृष्ण और राम के दोनों भक्त हनुमान और अर्जुन और भीम का और हनुमान का मिलन है, तो ये एक गीता और रामायण का संगम का श्लोक है। तो इसकी कथा कल करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद।